कार की गुनगुनाहट एक लय में चल रही थी, ऐसी लय जिसमें नींद अपने आप बहने लगती है। श्यामली को कब गहरी नींद आ गई उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। उसका सिर अब पूरे भरोसे से विश्वनाथ के कंधे पर टिका था। सांसें धीमी और गहरी थीं, जैसे थकान ने आखिरकार उसे छोड़ दिया हो। विश्वनाथ ने बहुत हल्के से उसकी तरफ देखा। सड़क सामने थी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी ओर लौट आतीं, उस चेहरे पर जो नींद में बिल्कुल अलग हो जाता था। नींद में श्यामली के भौहें ढीली थीं, माथे पर वो चिंता की सिलवटें नहीं थीं जो दिन में अक्सर उभर आती थीं। पलकों की छाया उसके गालों पर पड़ रही थी, होंठ हल्के से खुले थे, जैसे कोई अधूरा वाक्य वहीं रुक गया हो। विश्वनाथ ने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखे, कार की स्पीड जरा और धीमी कर दी। उसे पता था अगर अचानक ब्रेक लगे या झटका आए तो उसकी नींद टूट सकती है, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। जयपुर की रात अब पीछे छूट रही थी, शहर की रोशनी कम होती जा रही थी और सड़कें सूनी। हवेली की ओर जाती वो लंबी सड़क जिसे वो बचपन से जानता था आज कुछ अलग लग रही थी। उसने शीशे में खुद को देखा, एक जिम्मेदार पति, एक आदमी जो सब कुछ समझते हुए भी बहुत कुछ कह नहीं पाता, और उसके कंधे पर सोई हुई वो औरत, उसकी पत्नी। विश्वनाथ ने बहुत धीरे से कंधा थोड़ा और सीधा किया। श्यामली का सिर जरा सा खिसका, फिर वहीं टिक गया। उसके बाल उसके कॉलर को छू रहे थे, वही खुशबू जो कभी घर लगती थी कभी सवाल। उसने कुछ नहीं किया, बस देखा। कार ने हवेली के फाटक की ओर मोड़ लिया। बाहर लगी पीली लाइट्स में पुरानी दीवारें उभर आईं, मोटी ऊंची, समय का बोझ उठाए। गाड़ी रुकी, ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला। उसकी हलचल से भी श्यामली नहीं जगी। विश्वनाथ ने हाथ बढ़ाकर बहुत हल्के से उसका नाम लिया, श्यामली। कोई जवाब नहीं, वो और गहरी नींद में जा चुकी थी। उसने एक पल सोचा उसे जगा दे, लेकिन फिर नज़र उसके चेहरे पर चली गई, नहीं आज नहीं। उसने सीट बेल्ट खोली, फिर बहुत संभल कर, जैसे कोई कीमती चीज़ उठाने जा रहा हो, उसे अपनी बाहों में ले लिया। श्यामली ने नींद में हल्की सी करवट ली, उसका सिर उसके सीने से लग गया। विश्वनाथ पल भर को ठहर गया, सांस थोड़ी भारी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कदम सधे हुए थे, हवेली का बड़ा दरवाज़ा बंद था। अंदर से हल्की सी हलचल की आवाज़ आई, नौकरानी मधु ने दरवाज़ा खोला, वो कुछ कहने ही वाली थी। सा, विश्वनाथ ने उंगली होठों पर रख दी। श, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन साफ, नींद में है। मधु ने नज़र नीचे की, श्यामली उसकी बाहों में थी, वो समझ गई। बिना एक शब्द कहे बस सिर हिलाया और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हट गई। अंदर की बत्तियां धीमी थीं, हवेली की रात शांत ठहरी हुई। बरामदे के एक कोने में आर्यन खड़ा था, वो शायद किसी काम से बाहर आया था या बस यूं ही। उसकी नज़र जैसे ही उस दृश्य पर पड़ी वो ठठक गया। श्यामली विश्वनाथ की बाहों में पूरी तरह सोई हुई, उसके कदम अपने आप रुक गए, सीने में कुछ टूट सा गया। वो जानता था ये सही है, ये उनका रिश्ता है, फिर भी देख पाना आसान नहीं था। उसने निगाहें फेर ली, चेहरा सख्त करने की कोशिश की, लेकिन आंखें भारी हो गईं। बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर मुड़ गया। कदमों में वो हल्की सी लड़खड़ाहट थी जो दिल के बोझ से आई थी। विश्वनाथ ने उसे देखा नहीं, या शायद देखा लेकिन उस पल कुछ नहीं कहा। उसकी पूरी तवज्जो उस औरत पर थी जिसे वो लिए चला जा रहा था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने कदम और संभाले, हर मोड़ पर उसका हाथ अपने आप जरा कस जाता, जैसे डर हो कि कहीं नींद टूट न जाए। कमरे का दरवाज़ा खुला, वही पुराना कमरा, वही भारी पर्दे, वही पीली सी रोशनी। उसने श्यामली को धीरे धीरे बिस्तर पर लिटाया, पहले उसके पैरों को फिर कंठों को, जैसे कोई बहुत नाजुक चीज रख रहा हो। श्यामली ने नींद में हल्की सी सांस ली, भौहें जरा सिकुड़ी फिर ढीली पड़ गईं। विश्वनाथ ने उसके जूते उतारे, फिर चादर उठाकर उसके ऊपर उढ़ा दी। चादर उसके कंधों तक आई, उसने बहुत हल्के से उसे सीधा किया। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा, कमरे में बस उसकी सांसों की आवाज़ थी और बाहर हवेली की गहरी खामोशी। उसने कुर्सी खींची, बिस्तर के पास बैठ गया, बस देखने के लिए। नींद में श्यामली का चेहरा और नरम हो गया था, जैसे दिन की सारी झिझक सारे सवाल कहीं बाहर ही छूट गए हों। विश्वनाथ ने बहुत धीरे से उसका बाल जो आंखों पर आ गया था हटाया, सिर्फ दो उंगलियों से, वो हिली नहीं, उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं। कितनी बातें थीं जो वो जागते हुए नहीं कह पाता, कितनी दूरियां जो रात में और साफ दिखती थीं। वो उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी उनके बीच बहुत कुछ अधूरा था। उसने हाथ पीछे खींच लिया, खड़ा हुआ, लाइट और धीमी कर दी, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए एक बार फिर मुड़कर देखा। श्यामली चैन से सो रही थी, और उस पल, बस उसी पल, उसे लगा कि शायद यही काफी है, कम से कम आज की रात के लिए। मधु ने दरवाजा धीरे से बंद किया और सांस छोड़ी, जैसे किसी राज को सीने में समेट कर लाई हो। गलियारे की हल्की रोशनी में उसके कदम सीधे नौकरानियों के कमरे की ओर मुड़े। अंदर पहुंचते ही उसने पल्लू ठीक किया। कमरे में पहले से ही दो और नौकरानियां थीं, राधा और कमला। राधा बेड पर बैठी बाल सुलझा रही थी, कमला खिड़की के पास दिए की बाती सीधी कर रही थी। मधु को देखते ही दोनों की नजरें उठी। इतनी देर? राधा ने आंखों से पूछा। मधु मुस्कुरा दी। आज का नजारा बस आंखों से उतर नहीं रहा। कमला ने दिया बुझाया और पास आकर बैठ गई। कुछ खास हुआ क्या? मधु ने आवाज धीमी की, जैसे हवेली की दीवारें भी सुन लेती हूँ। साहब, श्यामली मैडम को गोद में उठाकर लाए थे। दोनों एक साथ चौंकी। राधा की आंखों में चमक आ गई। सच? हूँ, मधु ने सिर हिलाया। पूरी नींद में थी मैडम, साहब ने ऐसे संभाल कर उठाया जैसे कांच की गुड़िया हो, एकदम धीमे कदम, सांस तक संभाल कर। कमला ने होंठ दबाकर मुस्कान रोकी। कितना ध्यान रखते हैं? और क्या, मधु बोली। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, आवाज हुई तो साहब ने बस उंगली होंठों पर रख दी, बोले नींद में है। राधा ने हल्की सी आ भरी। ये तो प्यार हुआ, मधु ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। प्यार ही है। कमरे तक ले गए, जूते उतारे, चादर ओढ़ाई, जैसे हर छोटी बात मायने रखती हो। कमला ने हंसते हुए कहा, हवेली में सब कहते हैं साहब सख्त हैं। सख्त? मधु ने सिर हिलाया। जो किसी को सोते हुए उठाकर ले आए वो सख्त कैसे हो सकता है? राधा ने शरारती नजर से पूछा। मैडम जगी नहीं? नहीं, मधु बोली, नींद में बस करवट ली, साहब के सीने से लग गई। एक पल को साहब ठिठक गए, फिर खुद को संभाल लिया। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई, वो खामोशी जिसमें बातें बिना कहे समझ ली जाती हैं। कमला ने धीमे से कहा, ऐसा ख्याल रोज रोज नहीं मिलता। मधु ने मुस्कुराकर पल्लू ठीक किया। आज की रात हवेली की थी ही कुछ और। राधा ने दीवार से टिकते हुए कहा, श्यामली मैडम खुशकिस्मत हैं। मधु ने दिया बुझाते हुए जवाब दिया, और साहब भी। तीनों की मुस्कान अंधेरे में खुल गई। बाहर हवेली शांत थी, जैसे उसने भी उस नरमी को अपने भीतर सहेज लिया हो।